ओम शांति। बाबा ने इस वर्ष को जब समाप्ति वर्ष घोषित किया तो सबके मन में प्रश्न उठे, इस समाप्ति वर्ष में हमें क्या करना है। तो समाप्ति वर्ष को मनाने की सरल सहज विधि क्या है, इसी पर हम कुछ ज्ञान बिंदु प्राप्त करेंगे। हमारे बीच उपस्थित है मलेशिया से पधारे हुए आदरणीय मीरा बहन जी, हम आपका सभा में बहुत बहुत दिल से स्वागत करते हैं। स्वागत है, स्वागत है। आपने 1968 में बाबा का ज्ञान प्राप्त किया और तुरंत ही अपने जीवन को यज्ञ सेवा प्रति समर्पित किया। 1972 तक भारत एवं विदेश के अनेक स्थानों पर आपने सेवाएं दी है। वर्तमान समय मलेशिया में रहकर साउथ ईस्ट एशियन देशों में बाबा के जो भी सेवा केंद्र है उनका आप बड़े सुचारू रूप से संचालन कर रहे हैं। तो आइए हम क्लास सुनते हैं समाप्ति वर्ष मनाने की विधि, आदरणीय मीरा बहन जी।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज की ये तीन बारी ओम शांति कहने का अर्थ क्या है, हर बारी अर्थ अलग होता है। आज विशेष बहुत सहज अर्थ हम समझते हैं। पहली ओम शांति, मैं कौन हूँ। दूसरी ओम शांति, मैं किसकी संतान हूँ। और तीसरा ओम शांति, मैं कहाँ से आई हूँ, मुझे कहाँ जाना है। बहुत सहज अर्थ है, सिर्फ उसका स्वरूप बनना है। आज विशेष आप सभी को बाबा के घर में जो बाबा से मिलन मनाने के लिए आए हैं, उन सभी को हम अपने दिल से स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत। जब भी हम बाबा के घर में मधुबन में आते हैं, हम सबके मन में यही विशेष लक्ष्य होता है कि हम ऐसे कुछ ज्ञान और योग के अनुभूति हम करके जाए तो हमारे परिवर्तन से अनेकों का परिवर्तन करने के लिए प्रेरणा दे। तो आज विशेष हम इस विषय पर कुछ विचार करेंगे। बाबा ने, अव्यक्त बाप दादा ने इस साल को विशेष समाप्ति वर्ष नाम से मनाने के लिए डायरेक्शन दिया है, आप सभी जानते भी हैं। परंतु जब से बाप दादा के मुख से ये शब्द सुना, सबके मन में अनेक विचार चलने लगा है। ब्राह्मणों के मन में समाप्ति वर्ष मनाना किसको कहा जाता है। सबसे पहले मनाना मना बनना, मनाने का अर्थ है बनना। तो हमको क्या बनना है इस समाप्ति वर्ष में। तो सबसे पहले हम ये विचार आपके साथ शेयर करना चाहते हैं कि समाप्ति शब्द का वास्तव में परिभाषा क्या है। ऐसा नहीं कि दुनिया ही समाप्त हो जाएंगे, परंतु वास्तव में हम ब्राह्मणों के लिए सबसे पहला परिभाषा हम ये सोच सकते हैं, अपने आप को इस साल में बाघ समान संपन्न और संपूर्ण बनाना। यही समाप्ति है। अभी उसके बाद कितना समय बचेगा वो पता नहीं, परंतु अभी हमको अपने आप को समान, संपन्न और संपूर्ण बनाना है। दूसरी परिभाषा, वैसे तो हम जानते हैं और रोज साकार मुरली में भी हम सुनते हैं, अभी नाटक पूरा हो रहा है, हरेक आत्मा को अपने घर वापस जाना है। तो समाप्ति का शब्द हम सबको ये याद दिलाता है, अब घर जाना है, रिटर्न जर्नी करना है, इसलिए रिटर्न जर्नी की तैयारियां करो। वैसे भी हम लोगों ने कुछ साल पहले सुना था कि दो विजल, दो सीटी बज चुकी हैं, अभी सिर्फ तीसरी सीटी विजल बजने वाला है, उसके बाद कोई रुक नहीं सकते। पहली सीटी बज गई जब मम्मा अव्यक्त हुए, एक घंटी, पहली घंटी, और दूसरी घंटी बजी जब बाप दादा अव्यक्त हुए, अभी तीसरी बाकी। बस जैसे रेलवे स्टेशन में होता है ना, जब आप प्लेटफॉर्म में जाते हैं तो पहली घंटी बजाते हैं कि सब पैसेंजर्स को अलर्ट करने, आपका ट्रेन आपके प्लेटफॉर्म पर आ चुका है। दूसरी घंटी बजती है हरेक को इशारा देने के लिए कि आप अपने अपने स्थान पर बैठ जाओ। अभी जब तीसरी घंटी बजेंगी तो क्या होता है, ट्रेन चल पड़ती है। अगर आप स्टेशन में चाय पानी पी रहे हैं तो वहां ही रुक जाएंगे, आपके लिए ट्रेन नहीं रुकेगा। अभी ऐसा समय है जो दो सीटी बज चुकी हैं हमारे आने के पहले, अभी तीसरा बजने वाला है, वो है समाप्ति का। उसके बाद कोई यहाँ रहेगा ही नहीं, सबको घर तो वापस जाना ही है। तो हमको ये शब्द अपनी रिटर्न जर्नी की याद दिलाते हैं। और तीसरी बात है कि हमको एवर रेडी रहना है। बाबा कई बार बताया है कि समय की इंतजार नहीं करो, इंतजाम करके समय के लिए इंतजार करो। तो ये समय की घंटी हमको वार्निंग दे रहा है, समाप्ति मीन्स एग्जामिनेशन टाइम। एग्जामिनेशन के बाद क्या होगा, ट्रांसफर हो जाएंगे। तो इसलिए भले कभी भी हम ज्ञान में आए हुए हो, अभी जो वर्तमान समय चल रहा है वो बहुत नाजुक, इसमें कोई भी तीव्र पुरुषार्थ करके जितना आगे बढ़ना हो बढ़ सकते हैं। इसलिए हमको एक एक सेकेंड, एक एक संकल्प की वैल्यू रख करके ब्राह्मण जीवन में चलना नहीं है, उड़ना है। तो उसके लिए ऐसे समाप्ति वर्ष मनाने के लिए, यानी संपन्न बनने के लिए, संपूर्ण बनने के लिए, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए, बाप समान फरिश्ता बन करके बाप के साथ घर में जाने के लिए कुछ बातों की विशेष अटेंशन, धारणा चाहिए, वो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। उसमें से अगर हम सभी बातों को आज से लेकर प्रैक्टिकल में धारणा करते जाएंगे तो मैं समझती हूँ हम समय के पहले हम तैयार हो जाएंगे, इसलिए हमको कोई पश्चाताप नहीं करनी पड़े। तो सबसे पहली बात, जब समाप्ति का शब्द हमने सुना, हमको मन में ये विचार आया कि भगवद गीता में भी 18 अध्याय है और एक शब्द दो बारी भगवद गीता के पुस्तक में रिपीटेशन हुआ है, वो है मन मनाभाव। तो लास्ट के 18वां अध्याय में तभी अर्जुन कृष्ण को कहता है कि अभी हमको समझ में आ गया, नष्ट मोहा स्मृति लब्ध बन गया है। तो वास्तव में समाप्ति वर्ष मनाने की सबसे पहली विधि अपने आप को नष्ट मोहा स्मृति लब्ध बनाना है। जितना हमारा मोह नष्ट होगा उतना हमारी स्मृति स्वरूप की स्थिति में स्थित रहेंगे। वैसे तो हम सबके अंदर स्मृति है, परंतु स्मृति और विस्मृति की खेल चल रही है, कभी देहाभिमान में कभी आत्माभिमानी स्थिति में। तो बाबा क्या चाहते हैं कि हम लगातार स्मृति का स्वरूप बन जाए। अभी हमारी स्थिति है सोच का स्वरूप, हम सोचते हैं योग लगावे, सोचते हैं हम आत्माभिमानी का अभ्यास करें, परंतु प्रैक्टिकली उस स्थिति में नहीं है। तो अगर हम ये विधि स्मृति स्वरूप रहने की अभ्यास जितना ज्यादा करेंगे उतना हमारे सब प्रकार का मोह नष्ट हो जाएगा। तो हमारा जो 18 अध्याय है यानी ज्ञान का जो सारांश है वो हमारे अंदर आ गई। नो वैसे भी कई बार बाप दादा ने अव्यक्त मुरलियों में बताया है कि लास्ट एग्जामिनेशन सबका एक ही विषय पर होगा और सबको एक ही सेकंड मिलेगा, परंतु वो स्थान कौन सा होगा हर एक का अलग अलग, डेट फिक्स नहीं है, बाकी पेपर फिक्स है, टाइम भी फिक्स है। तो समाप्ति वर्ष के लिए हमको क्या तैयारी करना है, उस प्रश्न का जवाब हम एक सेकंड में दे सके। एक सेकंड से ज्यादा भी चला गया तो हम दूसरे नंबर में चले जाएंगे। तो वो है स्मृति स्वरूप, एक सेकंड में अशरीरी बन जाना और अंतिम समय में एक सेकंड में अशरीरी चारों तरफ हलचल का वातावरण के बीच में होते हुए भी एक सेकंड में हम अशरीरी बन जाए, उसके लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए। कोई भी अभ्यास हम बहुत काल से करते हैं तो अंतिम समय वो ही हमको काम में आएगा। तो इसलिए हम सभी ऐसे समझे अभी से लेकर, जैसे मम्मा बहुत समय पहले ये शिक्षा देती थी हर श्वास को अंतिम श्वास समझो, हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझो, तो ऐसे हम अपनी स्मृति में रखें तो हम लास्ट पेपर में एक सेकंड में पास विद ऑनर हो सकते हैं। तो ये दूसरी विधि, सबसे पहली विधि है स्मृति स्वरूप। तो आत्मा माना देह क्या है वो ऐसे विस्मृत हो जाए जैसे कि हमको मालूम भी नहीं, जैसे द्वापर में हम आत्मा को कैसे भूल गए, तो ऐसे अभी हम शरीर को भूल जाए, शरीर की स्मृति की अविद्या, तभी हम आत्मा की स्मृति स्वरूप स्थिति का अनुभव कर सकते। तो दूसरी विधि है सारे दिन के अंदर बार 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 अशरीरी बनने का अभ्यास को हम बढ़ाएं, क्योंकि ये जो एक घंटे में एक मिनट का गीत बजता है अगर उसकी तरफ भी हम सारे दिन अटेंशन दें और एकदम उसी समय अशरीरी अशरीरी मना, जैसे कि हम जीते जी मर गए, जब कोई शरीर छोड़ जाता है ना वो आत्मा अशरीरी हो जाते हैं, परंतु हम शरीर में रहते हुए ऐसे एक सेकंड में अशरीरी हो जाए, सब बातों से परे, सिर्फ डिटैचमेंट ही नहीं, परे की अवस्था, डेथ साइलेंस का अनुभव करें। कहा जाता है कि एक मिनट का अशरीरी अवस्था का अनुभव एक घंटे की नींद के बराबर है, यानी वो शरीर को भी इतनी ताकत देती है जो हम रिफ्रेश हो जाते हैं। तो ये आप विधि अपनाइए, बार बार एक घंटे में भी कम से कम एक बार हम अशरीरी बनते जाएं, ताकि हम अपने को लगे कि हम जब भी हमको इस शरीर से अलग होना है हम तैयार हैं। और तीसरी बहुत इम्पोर्टेंट, तो घर जाना है, रिटर्न जर्नी है अभी, अगर ये हमारी स्मृति में रहेगा तो हमको चाहिए समेटने की शक्ति, विशेष ना कहां पर भी जर्नी करना होता है तो बेटी बिस्तरा बोरी बिस्तरा बंद करके रखते हैं, जब भी जाना होता है तो अपनी सामान लेके चल सकते, तो यहाँ पर भी हमको ये विधि जरूर अपनाना है, समेटने की शक्ति। तो समेटने की शक्ति का मतलब कि सेकेंड में जो बात हो गई उसको बिंदी लगाना, समेट लेना, उसके बारे में न सोचना है न किसी को कुछ बताना है। तो समेटने की शक्ति माना एक सेकेंड में बीती हुई बातों को बिंदु लगाना, और दूसरा विस्तार को सार में समाना। अभी समय है ही नहीं, छोटी छोटी बातों को लेकर के विस्तार करते जाए, इस वेस्ट ऑफ टाइम वेस्ट ऑफ एनर्जी, क्योंकि हम तो जानते हैं जो कुछ हो गया अच्छा हुआ, बुरा है नहीं, इसलिए जब हमको पता ही है हर बात हमको चट्टी कला में ले जाते हैं तो इसलिए प्रश्न ही नहीं। तो ये कला आप सीख लीजिए तभी लगेगा आप समाप्ति वर्ष मना रहे हैं, सेकंड में न मुख में न मन में रिपीट हो। और तीसरा समेटने की शक्ति माना पहाड़ को राई बनाना, राई को पहाड़ नहीं। हम सभी बहुत होशियार है, छोटी बात को इतना बड़ा करके विस्तार में ले जाते हैं, पर अभी वो बात नहीं, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। नो मम्मा बाबा के अंदर ये धारणा पहले से ही थे, तभी वो नंबर वन में चले गए। तो इसलिए तीसरी विधि विशेष हमारे अंदर चाहिए, समेटने की शक्ति। जैसे जब चाहिए कर्मेंद्रियों को यूज करें, जब भी शरीर के द्वारा कोई कर्म नहीं है तो हम उसको विड्रॉ अंदर ले लेवे, ताकि हमारी एनर्जी वेस्ट ना हो। और चौथी बात विशेष, हमको ये समय समाप्ति का चल रहा है वो अपने को भी रियलाइज हो और दूसरों को भी हमारे जीवन से दिखाई दे, उसके लिए विशेष धारणा चाहिए बेहद के वैराग्य वृत्ति। हमारे अंदर अभी वैराग्य है पर बेहद का नहीं है, बेहद माना सदा, बेहद माना चारों तरफ से। तो अभी वैराग्य है स्मशानी वैराग्य है, टेम्पररी, कोई भी बातें होती है या योग बट्टी में आते हैं या बड़े हमारे पास आते हैं, वातावरण शक्तिशाली होती है तो थोड़ी सी वैराग्य आ जाता है अपनी कमी कमजोर के बारे में, तो थोड़ा समय के लिए हम परिवर्तन कर लेते, फिर बाद में अंदर में बीज है ना, फिर वो बाहर निकल आता है। तो हमको अभी ऐसी बेहद के वैराग्य वृत्ति को धारण करना है, तो हमारी वैराग्य वृत्ति सर्व आत्मों के अंदर वो वैराग्य लाए। अभी भी हमारे अंदर कितनी आकर्षण है, देह तरफ आकर्षण, देह संबंधियों के तरफ, पदार्थों के तरफ, और सबसे बड़ी आकर्षण है अपने पुराने संस्कारों के तरफ। तो हम जब ये चारों तरफ से हमारी बुद्धि उठ जाए, किसी की तरफ से भी हमारा आकर्षण नहीं, तो बाबा ने क्या विशेष शिक्षा दी है, अपने अंदर से बेहद के वैराग्य वृत्ति को धारण करने के लिए बाबा ने कहा कि आंखों से जो कुछ देखते हो, देखते हुए नहीं देखो, ऐसे समझो ये ऑलरेडी मरा पड़ा है या मिट्टी में मिल गई है, खत्म हुआ पड़ा है, तो हमारी दिल उसमें नहीं जाएगा। तो हमको याद है प्रकाशमणि दादी कहती थी कि ब्राह्मणों को तीन प्रकार के तो वैराग्य आया है, देह के तरफ, देह के संबंधियों के तरफ और पदार्थों के तरफ भी कुछ परसेंटेज, बाकी एक बात का वैराग्य नहीं आया है, वो अपने पुराने संस्कारों के लिए। अभी भी हम शब्द यूज करते हैं मेरा संस्कार, मेरा नेचर, तो हम उसको मेरा मेरा समझ करके अपने पास रख दिया है। जहां पर मेरा शब्द उच्चारण होता है वहां अटैचमेंट जरूर होता है, तो वो मेरा संस्कार नहीं है, वो तो रावण का संस्कार है, पराया संस्कार है, उसको हम क्यों अपना रखते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं ना, संसार परिवर्तन इसलिए नहीं हुआ है, हम हरेक का पुराना संस्कार परिवर्तन नहीं हुआ है। तो हम इस प्रेरणा लेके जाए, इस बारी सचमुच हम समाप्ति के ओर जा रहे हैं, तो हमारी जीवन से, हमारी वैराग्य वृत्ति से सबको पता चले, बस अभी हमको जल्दी जाना है, ये दुनिया खत्म होनी है, ये सारी दुनिया ऑलरेडी खत्म हुई पड़ी है। तो फिर आप देखेंगे एक तरफ से वैराग्य, दूसरी तरफ से परिवर्तन चालू हो जाएगा। समाप्ति का दूसरा अर्थ है परिवर्तन, तो ये कलयुगी परिवर्तन होके सत्य को तो आना ही है। तो हम सभी इस बारी विशेष, इस विशेष धारणा के तरफ अटेंशन दे। त्याग भी परमानेंट हमारा तब रहेगा वैराग्य के आधार से त्याग हो। अगर आपने ऐसे ही त्याग कर दिया वैराग्य के बिना, तो वो ज्यादा समय नहीं चल सकता। तो इसलिए अपने अंदर से रियलाइज करें, अपने अंदर से महसूसता हो कि बस जो कुछ इन आंखों से हम देखते वो खत्म हुआ पड़ा है, तीसरा नेत्र को हम ज्यादा यूज करें। जितना ज्यादा हम दिव्य बुद्धि तीसरे नेत्र द्वारा काम लाएंगे, उतना हमको परंधाम नजर आएगा, बाबा नजर आएगा, अपनी आत्मा की स्मृति बढ़ेंगे। तो हमको किसी को बताना नहीं चाहिए कि हम समाप्ति वर्ष मना रहे हैं, मुख से बोलने की जरूरत नहीं है। देखो जैसे घर में बच्चे का एग्जामिनेशन होता है ना, तो बच्चा बोलता नहीं है, परंतु सारे घर का वातावरण, जैसे कि माँ बाप भी एग्जामिनेशन में जा रहे हैं, वातावरण ऐसा बन जाता है ना, बच्चे का टेलीविजन देखना, मोबाइल में बात करना, घूमने फिरने जाना सब बंद हो जाता है, बस पढ़ाई करना है, एग्जामिनेशन है, तो माँ बाप को भी वो ना लग जाती। तो हम भी ऐसा वातावरण बनाए कि सचमुच ब्रह्मा कुमारी समाप्ति साल मना रहे हैं, मुख से नहीं, परंतु प्रैक्टिकल हमारी वैराग्य वृत्ति की धारणा से। और पांचवी विशेष बात है साइलेंस। आज हम कई बार बाप दादा से सुना है साइलेंस की शक्ति इवन साइंस को भी चलाते हैं, साइंस के ऊपर भी हम विजय तब प्राप्त कर सकते जब हमारी साइलेंस की शक्ति हो। तो ये भी विशेष हमको अटेंशन रखना है कि जितना हो सके मुख का भी साइलेंस और मन का भी साइलेंस, टॉक लेस एंड थिंक लेस। ज्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि कराने वाला बाबा हर काम करा रहा है करण करावन होकर के, और सब कुछ ड्रामा अनुसार हो रहा है, आप सब मानते हैं। तो हमको ज्यादा सोचने की क्या जरूरत है, सिर्फ हमको अपनी साक्षीपन की सीट पर बैठ करके जो हो रहा है वो हमको देखना है, उसका फायदा लेना है। तो इसलिए जितना हो सके मैं समझती हूँ हमारे संकल्पों की स्पीड को पहले कम करना है। हमको याद है एक बारी दादी जानकी ने हम सब विदेशियों को ये चैलेंज दी थी, देखो आज आप एक सेकंड में कितना संकल्प सोचते हो, चलो दो संकल्प कहे, तो एक मिनट में कितना संकल्प हो गया 120। तो जितना ज्यादा सोचेंगे उतना बोलेंगे भी तो ज्यादा ना, तो क्यों नहीं हम संकल्पों की बचत करें। तो यहां से आप चालू कीजिए, अभी से लेकर दो सेकंड में एक संकल्प, तो एक मिनट में कितना हो गया 30 संकल्प, गिनती कर सकते हैं। तो अगर आप संकल्पों की सिद्धि चाहते हैं तो कम सोचना पड़ेगा, क्योंकि कम सोचेंगे तो शक्ति होगा संकल्पों में, आपकी संकल्प की सिद्धि हो जाएंगे। तो हमको साइलेंस पहले यहां चाहिए। कई बार हम देखते हैं कहते आज साइलेंस डे है, बैच लगा के घूमते रहते और बात बहुत करते रहते, तो हमको बैच लगाने की भी जरूरत नहीं, पर हम ऐसे नेचुरली साइलेंस में रहे ताकि हमारा संकल्प की गति कम, मुख से भी हम कम बोले। अभी तो हमको फरिश्तों की दुनिया में जाना है ना, सूक्ष्म वतन में, तो वहां कौन सी भाषा होंगी, मूवी इशारों की भाषा, मुख की भाषा नहीं। तो इसलिए अभी हम ऐसी प्रैक्टिस करें साइलेंस की शक्ति को, तो न केवल हमको अनुभूति हो कि हम अभी जा रहे हैं सूक्ष्म वतन, पर दूसरों को भी जो भी वातावरण में आएगा वो भी वहां हमारे साथ तैर जाए। पॉसिबल, कम बोलना पॉसिबल है, जहां 10 शब्द बोलना है वहां सिर्फ 2 शब्द इनफ। कई बार हमको बोलने की भी जरूरत भी नहीं है, अननेसेसरी हम इंटरफियर करते हैं दूसरों के बारे में बोल करके। 3 बातें हमको छोड़ देना है, परचिंतन, परदर्शन और परदोष। अगर ये 3 पर को काट देंगे आपको सूक्ष्म वतन में जाने का पर मिल जाएगा, विंग्स मिल जाएगा। तो इसके लिए हमको विशेष अपनी शांति की शक्ति की धारणा से वातावरण के अंदर ये मैसेज देना है कि बस अभी हमको साकारी दुनिया से आकारी दुनिया में जाना है। समाप्ति का मतलब कि ड्रेस चेंज। साकार बाबा भी अपने पार्ट को समाप्त कैसे किया, परिवर्तन किया। अभी भी हमारे साथ है बाबा, दूर नहीं है, सेकंड की बात है, सिर्फ देश बदल दिया वेश बदलने के कारण। तो समाप्त समाप्ति वर्ष मनाना माना देश और वेश को बदलना। तो हम इस साकारी दुनिया में रहते हुए आकारी दुनिया का अनुभव करें। साकार बाबा ने भी अनुभव कराया, जो भाई बहने साकार में बाबा से मिले 1968-69 में, वो अनुभव सुनाते हैं कि कैसा बाबा शांति में चले जाते थे। इतना शांति बाबा को पसंद आता था, अपने कमरे में एक घड़ी थी, घड़ी टिक टिक करती थी। बाबा ने उस घड़ी को भी निकलवा दिया, आवाज नहीं चाहिए। तो जितना आप आवाज से परे शांति की भाषा से सोचना चालू करेंगे, बोलना चालू करेंगे, तो आप देखेंगे वातावरण मैसेज देगा, अभी इस दुनिया से हमको ऊपर जाना है, मूवी साइलेंस दुनिया में, तो सहज हो जाएगा। और शांति की भाषा किन चीजों से बनी हुई है? शांति ये नहीं कि चुप रहना, अंदर अंदर हलचल चलते रहे, वो शांति नहीं, उसको कहते क्वाइट। शांति की शक्ति साइलेंस पावर माना तीन है उसमें, प्योर थॉट्स, प्योर फीलिंग्स एंड लैंग्वेज ऑफ द आईज, माना शुद्ध संकल्प, प्योर थॉट्स। जितना ज्यादा हमारे अंदर शुद्ध संकल्प चलेगा, और वो शुद्ध संकल्प जब एकाग्र हो जाएगा तो वो फीलिंग्स में परिवर्तन हो जाता है, शुभ भावना, शुभ कामना के रूप में परिवर्तन हो जाता है। फिर आपको मुख से बोलने की जरूरत नहीं, आपकी नयनों की भाषा से, इशारों की भाषा से हम बोल सकते हैं। तो इसलिए इस बारी हम मधुबन से विशेष शांति की शक्ति का वरदान ले जाए, और खास करके विदेशों में ये आदत है कि 4 घंटा सुबह को, जब से हम उठते हैं 4 बजे से 8 बजे तक कंप्लीट साइलेंस, वरना हमको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। बाबा के साथ बात करना, अपने साथ बात करना, तो ये शांति की शक्ति पवित्रता के आधार से ही हमारे जीवन में आ सकती है। जितना हमारे अंदर संपूर्ण पवित्रता, उतनी हमारे अंदर शांति की शक्ति जमा होंगी। और ये शांति की शक्ति इतनी तेज है जैसे लेजर, यहाँ बैठ के किसी के लिए भी आप शुभ भावना रखेंगे तो उसको 1 सेकंड में पहुंच सकता है, पॉसिबल है। और दूसरा ये भी हम कह सकते हैं, समाप्ति वर्ष मनाना माना सब हदों को छोड़ देना, मैं मेरा, तू तेरा, मेरा सेंटर, मेरी एरिया, मेरा सेवा, मेरी डिपार्टमेंट, कुछ नहीं, सब हदों से पार बेहद में चले जाना, क्योंकि यही हमारी पुरुषार्थ में दीवार, विघ्न, प्रॉब्लम्स बनाता है ना, है नहीं, वास्तव में है बाबा की सेवा और बाबा का परिवार और बाबा के बच्चे। जैसे हम कहते हैं ना कि भगवान ने जब सृष्टि रचा तो कोई डिवाइड नहीं किया था, ये ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका, ये सभी मनुष्यों ने किया है, ये बाउंड्रीज। तो हमको समाप्ति वर्ष घर जाना माना ये सब हदों से पार बेहद, तो जो हम कहते हैं ना वसुदेव कुटुंबकम, ये सारी दुनिया एक परिवार है, हम सब भाई बहने हैं, ऐसे हरेक को फीलिंग हो आपसे अपनापन का। मुझे याद है एक बारी प्रकाश मणि दादी से डबल विदेशियों ने प्रश्न पूछा था कि दादी आपको कैसा मालूम कि आप सदैव बेहद में रहते हो, डायरेक्टली पूछा था। दादी ने कहा मुझे मालूम है इसलिए कि मैं हरेक के लिए समदृष्टि रखती हूँ, हरेक के लिए मैं मेरी दृष्टि एक ही बिंदु रूप में ही देखती हूँ सर, सबको, चाहे वो बुढ़ा हो, जवान हो, धनवान हो, गरीब हो, बीमार हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसके लिए हर एक को मेरे से अपनापन का फीलिंग होता है और हमको भी उनके साथ अपनेपन की फीलिंग। तो इसी स्मृति से ही हमको घर जाना है, तो इसलिए बेहद में रहो, हद की दीवारों को तोड़ दो। तो जब हम ऐसे हदों को खत्म कर देंगे तो आपको क्या लगेगा, सत्युग अभी आ गया, सूक्ष्म वतन ये स्थूल वतन बन जाता है। तो इसलिए बेहद में रहना, मेरा मैं, मेरा विशेषता, मेरा गुण, मेरी सेवा, ये सब खत्म। बाबा करण करावन हार, बाबा ने विशेषता ने बाबा ने दी है, ये बाबा की देन है, तो हम उस देन को उसकी सेवा में यूज कर रहे हैं, तो निस्वार्थ हो जाएंगे, कोई प्रकार का स्वार्थ नहीं होगा। क्योंकि देखिए आजकल भी हम योग में बैठते हैं ना, तो व्यर्थ संकल्प किस बात के लिए आता है, कोई न कोई हद के कारण मेरी महिमा हुई या मेरे को इंसल्ट किया, यू नो, मेरी सेवा में इंटरफेर किया, मुझे मान नहीं मिला, तो चाहिए हद के कारण। तो अभी हम ऐसे भरपूर हो जाए तो हमको कोई से भी न महिमा न कुछ भी करे, मेरी स्थिति एक रस। तो समाप्ति का मतलब है अपनी स्थिति को अचल, अढ़ोल और स्थिर बनाना, चाहे कोई भी हलचल चलते रहे। तो अंतिम तो यही परीक्षा आएंगी ना, तो हम चारों तरफ हलचल के बीच में अचल रहे तभी हमारा नंबर आउट होगा। तो इसलिए अभी छोटी छोटी परिस्थिति हमारे सामने आते हैं टेस्ट के रूप में, कभी समस्या के रूप में, कभी परिस्थिति के रूप में, कभी विघ्न के रूप में, कभी ग्रहचारी के रूप में, बुरी दशा के रूप में, ग्रहचारी के रूप में। तो उसी समय हम एक्सपेरिमेंट करके देखें कि कौन पावरफुल है, परिस्थिति पावरफुल है या मैं पावरफुल हूं। तो उसकी कसौटी क्या चेक करने का, यही है सिंपल बात। अगर मेरी स्थिति शक्तिशाली है तो हम अपनी स्थिति से परिस्थिति को बदलेंगे, मुख से कुछ नहीं बोल के, योग की शक्ति से, शांति की शक्ति से, पवित्रता की शक्ति से उस परिस्थिति को हम बदल देंगे। अगर हमारी स्थिति कमजोर है तो वो परिस्थिति हमको बदल दिया। परिस्थिति भी किसने बनाया, कोई आत्मा अपने संस्कारों के वश होकर के परिस्थिति हमारे सामने लाए, तो हम उसके वश हो गए, माना हम शक्तिशाली नहीं। तो अपनी स्थिति से ही आपको मालूम पड़ेगा कि आप समाप्ति का वर्ष मना रहे ही या नहीं। जितना हमारी स्थिति अचल और ढोल और स्थिर, जैसे टावर के समान, बाबा की यादगार में टावर क्यों बनाया है, स्तंभ, वो ऊंचा भी होता है और स्ट्रांग भी होता है, कितना भी कोई हिलाने की कोशिश करे हम हिले नहीं, भले हो हिल जाए, ऐसी हमको अपनी स्थिति को बनाना है। अभी भी कुछ समय पहले आप सबको तो मालूम होगा अव्यक्त बाप दादा ने एक मैसेज भेजा था जिसमें तीन बातें बताई थी। एक तो हमको अमृत वेला शक्तिशाली बनाना है, साधारण नहीं, और दूसरा बाबा ने विशेष कहा था कि स्थूल साधनों को थोड़ा सा स्टॉक रखो कुछ समय के लिए, और तीसरी बात विशेष थी कि आपस के संबंध में कोई भी मतभेद है, कुछ भी भाव स्वभाव है, उसको खत्म कर दो। तो ये इशारा है ना समाप्ति वर्ष मनाने का, तो हमको देखना है हम जिसके साथ भी रहते हैं, जिसके साथ सेवा करते हैं, जो हमारे संपर्क में हैं, सबके साथ हमारा मिलन स्वभाव, मिलनसार स्वभाव है या नहीं, कोई भाव स्वभाव का टक्कर है या कोई मत भेद है, तो हम अपने आप से पूछे कि हमारा कौन सा पुराना संस्कार है देहाभिमान में लाकर इस टक्कर में लाने का निमित्त बनता है। तो अगर हम ऐसे पुराने संस्कार को वश होकर के हमारे से कोई कर्म हो गया हो, तो हम उस आत्मा के पास जाकर के उससे हम माफी मांग लेंगे। तो इट इज टाइम टू फॉरगिव एंड फॉरगेट। अभी वो समय नहीं है पिछले हुए कथाओं को बैठ करके रामायण कथा, महाभारत कथा, रामायण कथा करते रहे हा? तो अभी फुल स्टॉप लगाना है ना सेकंड में। तो हम भी महसूस करें कि हमारे से ये भूल हो गई, हमने दुख दिया, इसके कारण ये समस्या हुई, सॉरी। ये ना जो ये जो शब्द है ना सॉरी, इट्स अ मैजिकल वर्ड, तो किसी के दिल को भी मेल्ट कर देता है। तो हम सब के दिल एक हो जाएगा मिलनसार। बाबा सत्युग की क्या महिमा करते हैं, शेर और बकरी एक घाट में इकट्ठे पानी पीते हैं। इसका मतलब क्या क्योंकि इतनी एकता होंगी, इतनी आपस में मिलनसार होंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम हरेक अभी हम बनाना है ना, बनना है, परफेक्ट बनना है। परफेक्ट का मतलब क्या, नो इफेक्ट नो डिफेक्ट, दैट इज कॉल्ड परफेक्ट। सो परफेक्ट आत्मा में ना कोई डिफेक्ट रहेगा ना उसको कोई इफेक्ट आएगा। अगर हमको कोई भी प्रकार का इफेक्ट आता है, फीलिंग हर्ट होता है, तो हमारी डिफेक्ट है। अगर हम उस डिफेक्ट को निकाल देवे तो ऑटोमेटिकली हम परफेक्ट बन जाएंगे। तो ये काम हम हरेक को करना है इस समाप्ति वर्ष में। कोई भी आत्मा हो, लौकिक में भी किसी के साथ ऐसा है, अलौकिक में भी, तो हम ही खुद रियलाइज करके हम अपने तरफ से माफी मांग लेते, ताकि उसके अंदर भी आएगा कि हमको भी ऐसे ही करना है, तो हमारे दिल एक बन जाएगा। तो बाबा दिल वाला इस एक्सरसाइज से हमारे से कितना खुश होंगे। तो मतलब कहने का कि हमारी अटेंशन इस साल में सिर्फ हमारे तरफ, बाबा के तरफ। दादी जानकी बताती है ना, अंगुली अपने तरफ ऊपर, ये नहीं दूसरों के तरफ नहीं, वो बंद। बहुत साल हम लोगों ने किया अभी हमको अकेला आए थे, हमको अकेला जाना है, तो इसलिए हमको ये फिक्र होना चाहिए कि मैं क्या स्थिति ले जाऊंगी। जब हम बाबा के पास जाएंगे तो बाबा क्या देखेगा, आप कितनी सेंटर के इंचार्ज थे, कितनी स्टूडेंट थे, वो नहीं देखेगा, आपकी स्थिति कैसे है। हम स्थिति को साथ में ले जाएंगे, तो इसलिए आप अपनी स्थिति के ऊपर, अपने ऊपर ही अटेंशन रखें। अभी है ही समय स्वचिंतन से स्वपरिवर्तन। जब तक हम अपने लिए समय नहीं निकालेंगे, अपने लिए स्वचिंतन नहीं करेंगे, तो हम परिवर्तन नहीं हो सकते, खास करके संस्कारों का परिवर्तन। नो, क्योंकि हम कई बार सोचते हैं स्व परिवर्तन करने के लिए कोई सीमा नहीं है, स्व उन्नति करने के लिए कोई लिमिटेशन नहीं है, आप जितना चाहे आप कर सकते हो, परंतु हम नहीं करते। तो इसलिए अपने ऊपर ही रहम करके इस साल में ज्यादा से ज्यादा टाइम आप स्वचिंतन के लिए दीजिए। इंग्लिश में एक प्रोवर्ब है ना, वेर एवर योर अटेंशन गोस your energy grows and life flows. जहां जहां आपका अटेंशन जाएगा, अटेंशन एकाग्रता होता है, तो वहां से एनर्जी पैदा होगा. वो एनर्जी आपको परिवर्तन करने में मदद करेगा. तो इसके लिए आप ऐसे ही सोचिए कि जो कुछ मुझे परिवर्तन करना है आज ही करना है, अभी नहीं. नहीं तो उसमें भी थोड़ी सुस्ती और अलबेलापन आ जाती. चलो कल करेंगे. इसलिए ब्रह्मा बाबा का स्लोगन सदैव याद रखना. बाबा को कौन से बच्चे पसंद आते थे? जो बाबा काम देवे उसी समय करे, अब. अगर कोई कहते थे ना बाद में, तो बाबा के दिल से उतर जाते थे. तो हम इस सारे साल के अंदर तीव्र पुरुषार्थी होकर के मंजिल पर समय के पहले पहुंचने के लिए ये स्लोगन जरूर याद रखें. जो काम कल करना है वो आज करना है, अपने लिए, स्वोन्नति के लिए. जो कल करना है वो आज, जो आज करना है वो अभी करना है. अभी नहीं तो कभी नहीं. ऐसा नहीं प्लान बनाओ कि मैं वापस अपने सेंटर में जाने के बाद योग बट्टी करूंगा. अभी तब तक बीच में कुछ हो जाए शरीर को, क्या पता, कुछ पता नहीं है. इसलिए जो आप करना चाहते हो वापस जाने के बाद, उसकी रिहर्सल अभी से चालू कर दो अपनी उन्नति के लिए. तो ऑटोमेटिकली वो संस्कार हमारा बनता जाएगा. किसी ने पूछा था, बार बार बाबा कहते ना कि समय थोड़ा है, समय थोड़ा है. तो बाबा क्यों नहीं बताते कितना थोड़ा समय है, ताकि हम जल्दी पुरुषार्थ करें. एक मास है या एक हफ्ता है, पर बाबा तो नहीं बताएगा डेट, नहीं तो हम डेट कॉन्शियस बन जाएंगे. परंतु ये समझना है, थोड़ा समय माना कितना थोड़ा, बताइए. थोड़ा समय है, थोड़ा माना अभी, बस, ओनली नाउ. ये सेकेंड है ना, यही थोड़ा समय है, क्योंकि वो हमारे हाथ में है. तो हमको पता नहीं दूसरी सेकेंड में हमारा क्या होगा. तो ऐसी समझ करके अगर हम पुरुषार्थ करेंगे तो हमारे अंदर दृढ़ता होगी और हमारे अंदर उत्साह होगा, तो हम लगातार पुरुषार्थ कर सकते हैं. इसलिए अभी फुल स्टॉप के सिवाय दूसरा कोई मात्रा आना ही नहीं चाहिए हमारी बुद्धि में. क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेटरी मार्क, कॉमा, उसमें हमारा समय चला जाता है. बस अभी हमको लास्ट में आते हुए भी हमको फास्ट जाना है और फर्स्ट नंबर लेना है, तो हमको अभी करना है. सुस्ती और आलस्य को कभी भी एंट्री नहीं दो. नो, प्रोकास्टिनेशन इज द थीफ ऑफ टाइम. अगर आपके मन में आता है कल से करेंगे, दैट इज माया. कल नहीं, अभी से करेंगे, तो फिर ऑटोमेटिकली हमारी एनर्जी बच जाता है. तो इसलिए ऐसे कुछ विधियां अगर हम अपने सामने अटेंशन रखें और प्रैक्टिस करें, ये दो चीजें इम्पोर्टेंट है. बाबा ने भी बताया अभी दो हफ्ते की मुरली के अंदर, ब्राह्मणों का ये नेचुरल नेचर होना चाहिए. ऐसा नहीं कि कहां अर्थक्वेक आ गई, कहां बाढ़ आ गई, तो थोड़ा समय के लिए हमारे अंदर वैराग्य आ गया और सब ठीक हो गया तो हम सो गए फिर से. एक बारी किसी ने दादी से पूछा था, दादी गुलजार से, हमको कैसे मालूम कि अभी रिहर्सल हो रहा है या रियल हो रहा है? तो दादी ने कहा था, रिहर्सल माना एक तत्व एक बारी अपना विकराल रूप दिखाए. कहां अर्थक्वेक होता है, एक कहां बाढ़ होता है, ऐसा. बाकी रियल माना चारों, पांचों ही तत्व, चारों तत्व तरफते अपना विकराल रूप दिखाई दे, वह है समाप्ति। तो उसी समय हम तो पुरुषार्थ नहीं कर सकते। पुरुषार्थ जो बहुत समय किया हुआ है वो ही हमको काम में आएगा, उस समय पुरुषार्थ नहीं कर सकते। तो इसके लिए आप दो विशेष शक्तियों को सदैव साथ में रखिए, टचिंग पावर और कैचिंग पावर। समाप्ति के समय हम कहां होंगे, किसके साथ होंगे, हमको कुछ पता नहीं है, परंतु हम अगर बुद्धि रूपी लाइन को क्लियर रखेंगे तो बाबा का टचिंग हमको मिलेगा, उसके अनुसार हम अपनी स्टेप ले सकते हैं। तो इसके लिए हम ज्यादा समय अभी इंतजार न करें कि हम जब बहुत समय और तेजी से तकलीफें बढ़ेंगी तो हम बहुत पुरुषार्थ कर लेंगे। नहीं, जो बहुत समय की हमारी आदत है, पुरुषार्थ है, वही अंत में हमको काम में आएगा। इसलिए हर घड़ी को अंतिम घड़ी, हर श्वास को अंतिम श्वास। तो अगर ये ध्यान में रखते हैं तो हम हमारे से कभी भी सुस्ती और आलस्य आ नहीं सकता। तो इसके लिए हम सब मिलकर के बाबा की आशा यही है, समाप्ति वर्ष मनाना माना बाबा की आशाओं को पूर्ण करना। बाबा ने हम सबकी आशाओं को पूर्ण कर दिया तो हम कब करेंगे? इट्स आवर टर्न। सो हाउ टू गिव रिटर्न? जस्ट मेक ए टर्न, मेक ए टर्न। माना आप अपने निजी आदि और अनादि संस्कार को धारण कर लो तो मध्यम संस्कार छूट जाएगा। तो ये है रिटर्न देने का समय। हमने लिया है बाबा से, अभी हमको रिटर्न देना है। रिटर्न कैसे देंगे? बस अपने आप को मोड़ देना। इसमें हमको कोई कंपटीशन कंपैरिजन नहीं करना है, इसने तो नहीं किया मैंने क्यों करूं, कोई करे ना करे। आप ये याद रखिए, जब घर जाएंगे ना हम अकेले अकेले जाएंगे, भले सब साथ में जाएंगे पर अकेले अकेले जाएंगे। अपना अपना धारणा, अपनी अपनी अभ्यास अपने साथ होगा। तो इसके लिए आप अपने को सदैव बाबा और हम कंबाइंड हैं। अभी जब तक संगम युग में बाबा हमारे साथ है उसको यूज कीजिए, उसको आह्वान कीजिए। बाबा कहते मेरे को आप यूज नहीं करेंगे तो मैं दूसरों को मदद करूंगा। तो बाबा को जितना हम यूज करेंगे अपने ऊपर कोई बोझ भी नहीं रहेगा और काम भी सहज हो जाता है। तो इसके लिए हम अमृत वेले को विशेष शक्तिशाली बनाएं। हमको बहुत अनुभव है अमृत वेले शक्तिशाली होने से क्या क्या फायदा है, क्या क्या नुकसान से हमको बाबा बचा देता है अमृत वेले उठने वालों का। तो कभी आपस में बैठ करके सुनेंगे तो बहुत आश्चर्य होगा। तो इसलिए कभी भी हम अमृत वेला साधारण ना करें और कभी भी अपनी स्थिति को छोटी छोटी बातों में हलचल में ना लाएं। जल्दी से सोचो नहीं, कम सोचो, यही स्लोगन आप ले जाओ। कम सोचो, धीरे सोचो, अच्छा सोचो। थिंक लेस, थिंक गुड, थिंक स्लोली, और वही सोचो जो आपको बोलना है और वही बोलना है जो आपको करना है। तो क्या हो जाएगा? मन वचन कर्म समान हो जाएगा। तो हम बाप समान सहज ही बन जाएंगे। और कुछ पुरुषार्थ नहीं कर सकते तो कम से कम इतना तो करें। तो फिर ऑटोमेटिकली हमारी हर संकल्प की सिद्धि हो जाएगी प्रैक्टिकली। अभी संगम युग में अगर हम संकल्पों की सिद्धि का अनुभव नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे? सत्युग में तो ऑटोमेटिक, वहां तो पवित्रता की शक्ति है, पर अब भी हमको करना है ये योग का प्रयोग। लास्ट में हमको समाप्ति माना संपूर्ण परिवर्तन होने के लिए अपनी योग को ज्वाला रूप देना है, साधारण योग नहीं। बाबा ने कहा ना कि तीव्र ज्वालामुखी याद, साधना ज्यादा चाहिए, साधन के आधार से साधना नहीं हो। विदाउट साधन फैसिलिटीज हमारी साधना चलते रहे, तो जब हम ऐसे साधक बन जाएंगे, हमारे संकल्पों की सिद्धि होती जाएंगे, तो समाप्ति का नजारा सबको दिखाई पड़ेगा। तो इसलिए हमारी योग को जितना हो सके उतना हम ज्वालामुखी रूप, अग्नि का रूप देते जाए, ताकि अपना जो पुराना सब कुछ संस्कार है खत्म हो जाए। क्योंकि घर जाने के लिए दो ही रास्ता है, आइदर यू कैन गो विद ऑनर और विद डिसऑनर। शिक्षा लेकर के, पनिशमेंट लेकर के जाना है, या पास विद ऑनर विदाउट पनिशमेंट, इट्स आवर चॉइस। तो आप चूज कीजिए, योग में रह करके हम अपनी सब विकर्मों को भस्म कर दें, ताकि हम बाबा के साथ साथ साथी बन करके, सजनी बन करके बाबा के साथ घर वापस जा सके। तो ऐसे मैं आशा रखती हूँ कि आप सभी भी इस बारी मधुबन से बाबा से मिलने के लिए आए हैं, तो ऐसे विधियों को अपने साथ ले जाएंगे और अपने प्रैक्टिकल जीवन द्वारा दूसरों को प्रेरणा देने के निमित्त बनेंगे, और ऐसा वातावरण बनाएं तो लोगों को अपने ही मालूम पड़े कि इनका अभी समय फाइनल चल रहा है, मुख से बोलने की जरूरत नहीं। नयनों की भाषा, बाबा कहते ना साइलेंस की भाषा, संकल्पों की भाषा से हम लोगों को बाबा का मैसेज देते रहे। तो ऐसे समाप्ति वर्ष मनाने के लिए इन एडवांस आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। ऑफकोर्स कल्प पहले भी हम लोग विजयी थे और विजयी रहेंगे, पर एक कदम हमारी हिम्मत का, बाबा का मदद हजारों कदम। तो ऐसे बाबा के मदद और आपके हिम्मत, ऐसे पुरुषार्थ में आगे बढ़ते हुए मंजिल पर पहुंच जाएंगे। ओम शांति। सिर होकर के बैठे और ऐसे बाबा की याद पावरफुल रीति से करें, तो हमारी जो डिटर्मिनेशन है वो और पक्का हो जाए।